الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اصلا تو ہم مقدمہ معارف القرآن پڑھ رہے تھے، معارف القرآن کی جلد نمبر 1 سے، اور پھر مقدمہ پڑھتے پڑھتے جو اس کا اصل تھا، یعنی جو اصل میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے تحقیق کری تھی تفسیر کے مقدمے کے لیے، تو انہوں نے ایک پوری کی پوری کتاب لکھ دی تھی علوم القرآن کے نام سے. تو ہم ایک مقام پہ پہنچ کر کے جب ہم تفسیر قرآن کی تفصیلات پڑھ رہے تھے، تو اس سے پھر ہم جو ہے نا وہ شفٹ اوور ہو گئے ہیں علوم القرآن کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر ہم نے یہی والا موضوع جاری رکھا ہے کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں یا جو گمراہیاں اس راستے پہ لوگوں کو پیش آئیں، تو ان کی کیا کیا وجوہات بنی. ٹھیک ہے، تو تفسیر میں گمراہی کے اسباب، یہ موضوع ہے جو کہ ہم اس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. تو پہلا سبب نا اہلیت ہم نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں حضرت نے لکھی تھیں، تو ان میں سے پھر علماء اور اجارہ داری، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ بھئی علماء تو تفسیر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تو اس کا گویا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کسی اور کو نہیں کرنے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اسی کے تحت جو ہے وہ علماء اور پاپائیت، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، تو اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. پھر اس کے بعد جو گمراہی کے سبب میں دوسرا سبب تھا، یعنی پہلا سبب کیا تھا، نا اہلیت. ٹھیک ہے، اور اسی میں جو ہے وہ غلط فہمی تھی علماء کے بارے میں. دوسرا سبب، قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، خود قرآن مجید کے تابع ہونے کی بجائے قرآن مجید کو تابع بنانے کی ناکام کوشش کرنا، تو یہ گمراہی کا دوسرا سبب تھا. اور تیسرا سبب تھا زمانے کے افکار سے مرعوبیت، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانے کا ہی ایک جز کہلائے گا، کیونکہ زمانے کے افکار سے آپ، یعنی آپ زمانے کے افکار سے کے تابع بنے ہوئے ہیں، آپ کی سوچیں آپ کی فکریں اس کے تابع ہوئی ہوئی ہیں. اب جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر جب پڑھنی شروع کری تو اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ہی افکار کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس زمانے کے افکار کے تابع ہونے، چونکہ ہم آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ زمانہ جو ہے وہ سائنس کا زمانہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی جو کہ سائنس ہی کا ایک شعبہ ہے اس کا زمانہ کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے زمانے کے افکار سے مراد سائنس کے افکار. ٹھیک ہے، اب سائنس کے افکار سے جب لوگ تابع ہو گئے، اس سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ مرغوب ہو گئے اور بالکل ویسی سوچنا شروع کر دیا جیسا کہ مروجہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، تو پھر اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا، کیا اس کا کانسیکوینس نکلا، کہ معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ معجزات جو ہیں وہ کوٹ ان کوٹ سائنس کے خلاف سمجھے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو معجزات کا انکار کیا. تو اس میں پھر ہم یہی تفصیل فی الحال پڑھ رہے ہیں، جس میں پچھلی کلاس میں ہم نے پچھلے ہفتے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں سے پیج نمبر 383 کے اوپر ہم نے بات روکی تھی کہ یہ جو حضرت نے یہ جو موضوع شروع کیا تھا وہ معجزات کا انکار، یہ معجزات کا مسئلہ موضوع جو شروع کیا تھا وہ نیوٹن کے ذکر سے شروع کیا تھا، اسحاق نیوٹن کے ذکر سے. ٹھیک ہے، یہ اسحاق نیوٹن جو ہے یہ 17ویں صدی یعنی 1600s کی پیداوار تھی، اور ایک بہت ہی یعنی دیندار گھرانے سے تعلق تھا اس کا، لیکن اس کی جو اٹھان ہوئی وہ باپ کے بغیر ہوئی، یتیمی میں اس کی اٹھان ہوئی، और माँ की भी शफ़क़त से जो है ये बड़े सालों महरूम रहा, और इसकी जो है ना वो तबीयत में भी जो है वो अच्छा खासा एक चिड़चिड़ापन भी और इस किस्म की चीज़ें भी आईं। तो इसने जो है ना वो सेल्फ तहकीक वगैरह जो शुरू करी, तो जहानत तो इसके अंदर थी, बाय बर्थ इसके अंदर बहुत जहानत थी। तो इसने जो है ना फिर यानी इसको गाइडेंस जो है वो नहीं मिली, जहानत इसके अंदर बहुत थी। इसने जो है वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन रिलीजन का जो है वो इनकार करना शुरू कर दिया। इसका ताल्लुक भी जो है वो यूनाइटेड किंगडम से था, ठीक है, इंग्लैंड के ही किसी जगह पे इसकी पैदाइश हुई थी। चर्च ऑफ इंग्लैंड से जो है वो इसके माँ बाप का ताल्लुक था, लेकिन इसने बड़े होकर के जो ट्रिनिटी था, जो कि ईसाइत का एक बहुत ही बिगड़ी हुई शक्ल, ट्रिनिटी के ऊपर यकीन, इसका इसने इनकार किया वगैरह। और इसने फिर अपनी थ्योरीज पेश करी कायनात को समझने के लिए, थ्योरी अपनी लॉज ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ जो है वो मोशन और इल्लत और मालूल, कॉज एंड इफेक्ट का नजरिया पेश किया। और इसके नजरिए के जो है वो उन लोगों ने तस्लीम भी कर लिया, साइंसी जो कम्युनिटी थी वहाँ पे यूरोप में उसने भी तस्लीम कर लिया। और चूंकि उनका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सिक्का बोल रहा था, यूरोप जो है वो एक्सपैंड हो रहा था, तो उसकी एक्सपेंशन के साथ फिर बाकी दुनिया के भी ऐसे लोग जिनका के अपना अकीदा कमजोर था, उन्होंने फिर इसको कबूल कर लिया और रूहानियत का इनकार करना शुरू किया, मोजज़ात का इनकार करना शुरू किया, ठीक है। और हमारे इलाके में इस तरह की जो एक बड़ी मशहूर तरीन शख्सियत है वो सर सैयद अहमद खान का जिक्र किया कि उन्होंने और उनके जैसे दूसरे मुतजद मुतजद्दीने दीन उन्होंने भी नेचुरल साइंसेस के नाम पर जो है ना वो दीनी मौजजात वगैरह का स्क्रिप्चर्स, क्योंकि दीनी किताबें जो हैं वो मौजजात से ही भरी पड़ी हुई होती हैं ऐसे वाकयात से, तो दीनी किताबों का इनकार भी इसका लाजमी नतीजा बन गया। तो हजरत ने लिखा था कि उसी वक्त जबकि बरसगीर में सर सैयद अहमद खान और दूसरे मुतजद्दीन इनकार कर रहे थे, तो उसी वक्त जो है ना वो यूरोप के अंदर एक दूसरा साइंसी थ्योरी भी जो है वो अपनी जड़ मजबूत कर रही थी, जो कि न्यूटन के नजरियात के खिलाफ थी, काफी काफी मामला न्यूटन के नजरियात से खिलाफ थी, वो आइंस्टाइन की इनकलाबी नजरिया इजाफत, ठीक है। तो उसके बारे में एक साइंसदान, और हजरत ने तो यहाँ पे लिखा है मुस्लिम साइंसदान, लेकिन हमें वैसे कोई मिला नहीं, हजरत ने तो यकीन कहीं पे इसको पढ़ा होगा कि ये शायद इसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा किसी वक्त, सर आर्थर एडिंगटन। तो उसका कोट हमने आखिरी चीज पढ़ी थी कि इसने लिखा कि साइंस की तहकीकात से अशिया की किसी अंदरूनी जाति वला यनफक का खासियत, यानी ऐसी चीज जिसका कि इनकार नहीं किया जा सकता हो, जिसके जिससे वो जुदा नहीं हो सकती हो, ऐसी खासियत या माहियत व नौयत का पता नहीं चलता, ठीक है। यानी साइंस की तहकीक से जो ना वो हम किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते कि इसकी यही खासियत है और इसके अलावा कोई और खासियत हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये सर आर्थर एडिंगटन ने ये बात कही। अच्छा, सर आर्थर एडिंगटन के बारे में मुझे ज्यादा ना तो पहले कभी पता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो मौका मिला वो ये कि इसकी जो वजह शोहरत है ना वो ज्यादा क्या है कि इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव किया था, ठीक है ना। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गोया के उसकी वजह से आर्थर एडिंगटन की जो है ना वो शोहरत है कि ये उसके साथ कोलैबोरेशन में और उसके साथ मिल करके इसने बहुत बड़ा नाम कमाया, ठीक है। तो इसने कहा कि नहीं जी, ऐसा कोई 100% ऐसी बात नहीं है। उसी तरह उसने ये भी लिखा कि एक अहम नतीजा खारजी दुनिया में कानून इल्लत के खत्म हो जाने का ये निकलता है कि फितरत और फौकुल फितरत के दरमियान कोई वाजह फर्क बाकी नहीं रहता, ठीक है। कानून इल्लत क्या था कि अगर कॉज होगा तभी इफेक्ट होगा, कॉज नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कानून इल्लत जो है ना ये इसकी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसका इनकार कर दिया। तो अब इसके इनकार का नतीजा क्या निकला कि जो चीजें आप नेचर के तहत समझते हैं और जो चीजें आप नेचर के खिलाफ समझते हैं, माफाउकुल फितरत का मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि फौक का मतलब होता है ऊपर, तो फितरत के ऊपर नहीं, मा फौकुल फितरत या फौकुल फितरत खाली अगर कहें, इसका मतलब क्या, फितरत के खिलाफ असबाब से हट करके खरके आदत, ठीक है। तो फितरत और फौकुल फितरत के दरमियान कोई वाज़े फर्क नहीं है, ठीक है। क्या मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस प्लैनेट अर्थ के अंदर चीजें फितरत के मुताबिक होंगी और किसी दूसरे जहान में या किसी दूसरी जगह पे जाकर के माफोकुल फितरत चीजें हो सकती हैं, यहां पे नहीं हो सकती। नहीं, यहां पर भी हो सकती हैं, इसी प्लैनेट अर्थ के अंदर भी फोकुल फितरत चीजें भी हो सकती हैं, असबाब से हट के चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा वाजे डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, कि जैसे दिन के वक्त फितरत के मुताबिक चीजें होंगी और रात के वक्त जो है वो फोकुल फितरत चीजें होंगी, ठीक है। या जो स्फेयर्स हैं एटमोस्फेयर के, तो जो नीचे वाला स्फेयर है उसके अंदर फितरत के मुताबिक चीजें होंगी और ऊपर चले जाएंगे तब जाके फौकुल फितरत चीजें होंगी। नहीं, फौकुल फितरत चीज यहीं पर हो सकती है, इसी टाइम के अंदर हो सकती है और इसी माहौल के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कॉल है जो कि मुफ्ती तटी उस्मानी साहब ने नकल किया है। आगे फरमाते हैं कि साइंस के मुसलमात में, यानी जो चीजें तस्लीम कर ली गई थी, उनमें ये जबरदस्त इनकलाब किस तरह रूनुमा हुआ, उसकी मुख्तसर सरगजश्त हमारे दौर के मशहूर साइंटिस्ट सर जेम्स जीन्स की जुबानी सुनिए, ठीक है। जेम्स जीन्स, ये भी ब्रिटिश ही था, ठीक है, और ये भी उसी तरह का ही था, लेकिन ये जरा 19वीं सदी के अंदर दुनिया में आया था, गालबन 1800s में। वो न्यूटन भी जो है वो इंग्लैंड का ही था, आइंस्टाइन भी गालबन इंग्लैंड का ही था ना, या जर्मन जर्मनी जर्मनी में था आइंस्टाइन तो, और ये जेम्स जीन्स जो था ये भी इंग्लैंड का ही। तो इसने लिखा कि गैलीलियो और न्यूटन की अजीम 17वीं सदी की ये बड़ी अजीम कामयाबी और फतह मान ली गई थी कि कायनात में हर मा बाद का तगैयुर व तबद्दुल या तखलीक अपने मा कबल का नागुजीर नतीजा व लाजमा होता है, ठीक है। यानी गैलीलियो का क्या था, वो याद नहीं आ रहा, उसने शायद वो कॉम्पस वगैरह का बताया था ना, ट्रैवल सी ट्रैवल वगैरह से का खास जो है वो क्रेडिट वो गैलीलियो को जाता है, और न्यूटन के बारे में तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये लोग 1600s में आए थे, तो उनकी जो अजीम कामयाबी मान ली गई थी ना, वो क्या थी कि जो कुछ भी बाद में होता है वो उसके पहले होने वाली चीज का नतीजा होता है, ठीक है ना। जो कुछ भी मा बाद मतलब व्हाट इज आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर इज ए, यानी अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट केम बिफोर इट, ठीक है। तो मा कबल होता है तो फिर मा बाद होता है, ये नागुजीर है, ये अनअवॉइडेबल है, ये एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट है ये चीज। हत्ता के सारी कायनात फितरत की पूरी कायनात फितरत की पूरी तारीख आखिर तक लाजमी और नागुजीर नतीजा इस इब्तिदा का है जिसमें वो पहले दिन थी। यानी ये तो कम से कम है कि जी कायनात एक दिन शुरू हुई, ठीक है ना, जो भी बिग बैंग थ्योरी के तहत बोले या जो भी बोले कि एक दिन ये शुरू हुई, तो अब उससे ही हर चीज जो कॉज हुई है, तो अगली चीज जो हुई है वो उसका इफेक्ट ही है। अब उसके बाद अगली चीज जो हुई है वो उससे पहले का इफेक्ट है, उसके बाद जो अगली चीज हुई है उसके पहले का इफेक्ट है, और यही चलता रहा, चलता चलता हत्ता के आखिर तक भी जो है ना यही चलता रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। विदाउट कॉज इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और वो कॉज क्या, वो जो जिसको के तबीई कॉज समझा जाता है, जिसको के नेचुरल कॉज समझा जाता है, ठीक है। यानी एलिमेंट्स ऑफ नेचर, चार एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहलाते हैं ना, बिल्कुल बुनियादी, आग हवा मिट्टी पानी, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं इससे मिलकर के जो भी चीज बनती है उसको नेचर कहा जाता है, ठीक है। उर्दू में उसको फितरत से ट्रांसलेट किया जाता है, अरबी में उसको तबीयत से ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तसव्वुर ही का, यानी ये तसव्वुर जो बन गया था ना गैलीलियो और न्यूटन की वजह से, तो इस तसव्वुर ही का लाजमा वो तहरीक थी, ठीक यानी इसका नतीजा वो तहरीक बनी कि जिसने सारी मादी कायनात को बस एक मशीन बना और समझा लिया था, बना और समझा लिया था, यानी सबको समझा दिया था, सबको ये बावर करवा दिया था कि जी वो ये एक मैकेनिकल वर्ल्ड है बस, ठीक है। ये सूरत हाल 19वीं सदी के आखिर तक मुसल्लम और जारी रही, 1800s के जो एंड तक जो है ना, ये यही सूरत हाल लोगों के जहनों में छाई रही। और सारी नेचुरल साइंस का वाहिद मकसद इस कायनात को मशीनी साख्त मैकेनिक्स में तब्दील व तहवील कर देना बन गया, ठीक है। यानी पूरी साइंस का जो तवज्जो इसी बात पे मरकूज हो गई कि इट्स ऑल मैकेनिकल, ठीक है। फिर इसी 19वीं सदी के आखिर महीनों में बर्लिन के मैक्स प्लैंक, ठीक है, बर्लिन यानी ये जर्मन साइंसदान था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम नजरिए की बुनियाद डाली, ठीक है, जिसको क्वांटम थ्योरी कहा जाता है ना। ये मैक्स प्लैंक जो था, ये क्वांटम थ्योरी का गोया के बुनियाद रखने वाला था, जो बिल आखिर तरक्की करके जदीद तबीयात फिजिक्स का यानी मॉडर्न फिजिक्स का एक हमागीर उसूल करार पा गया, जिसने आगे चलकर साइंस के मैकेनिकी अहद का खात्मा करके एक नए दौर का आगाज कर दिया, ठीक है। अब ना तो मुझे मौका मिला इसकी ज्यादा तहकीक करने का, क्योंकि स्कूल स्कूल में जो पढ़ा था वो तो सब वैसे ही भूल जाते हैं, ठीक है, अनलेस कि आप उसी फील्ड के अंदर रिसर्च में चले जाएं, या उसी फील्ड के अंदर ही जो है ना वो आपका बहुत ही रेलिवेंट जॉब रोल हो, तब तो स्कूल की चीजें याद रहती हैं, वरना स्कूल की चीजें जो है वो मुझे तो याद नहीं रहती, आपको रहती होंगी तो पता नहीं। तो अब दोबारा पढ़ते तो फिर आपको जरा और उसकी तफसील बता, लेकिन फिर ये भी है कि एक तो टाइम भी नहीं मिलता उसके लिए, दूसरा ये भी है कि भाई हमने असल में साइंस की क्लास की थोड़ी बनानी है, साइंस की क्लास में शायद ज्यादा पढ़ कर पढ़ा दें, लेकिन यहाँ पर तो असल मकसद तो दूसरा है ना, कुरान मजीद की तफसीर की बात चल रही है असल में। तो बेसिकली क्वांटम थ्योरी जो था, और जो कि एटॉमिक और सब एटॉमिक जो डिस्कवरीज हुई थी, वो जो है ना इससे इसको इसका क्रेडिट काफी मिलता है मैक्स प्लैंक को। इब्तिदा में प्लैंक के नजरिए से सिर्फ ये मालूम हुआ था कि कायनात फितरत में तसलसल का अमल कार फरमा नहीं है, यानी इट्स नॉट ऑल कंटिन्यूस, तसलसल एक के बाद दूसरा, दूसरे के इफेक्ट से तीसरा, तीसरे के इफेक्ट से चौथा, चौथे के इफेक्ट से पांचवा, ये कारफरमा नहीं है। लेकिन यानी उससे सिर्फ अब तक इतना मालूम हुआ, लेकिन 1917 में आइंस्टाइन ने बताया, ये स्टॉलिन जो लिखा ना, ये वो स्टॉलिन नहीं है बल्कि आइंस्टाइन ही में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आइंस्टाइन ने बताया 1917 में कि प्लैंक का नजरिया दरअसल बहुत ज्यादा इनकलाब अंगेज नतज का हामिल है, और बकौल जेम्स जीन्स के, जिसका पिछले सफ़े के ऊपर जिक्र आया था, इंग्लिश साइंसदान जो था उसके, कि ये नज़रिया इस कानून इल्लत व मालूल ही को अपनी फरमा रवाई के तख्त से उतार देने वाला है। यानी ये जो फरमा रवाई यानी कि बादशाह का जो उसको तख्त मिल गया था ना, कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी को, उसको तख्त से नीचे उतार दिया इसने, ठीक है, इस नए वाले नजरिए ने, जिसको अब तक कायनात के एक हमागीर रहनुमा उसूल का मकाम हासिल था। पुरानी साइंस का यह कतई ऐलान और दावा था कि फितरत यानी नेचर सिलसिलाए इलल व मालूलात के बंधे हुए कवानीन से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, यानी जो कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला है उससे ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, बिल्कुल उसी की पाबंद है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये पुरानी साइंस का ये कतई ऐलान था। इल्लत अलिफ के बाद नागुजीर तौर पर बा के मालूल ही को पैदा या जाहिर होना चाहिए, ठीक है, यानी जैसे कि अल्फाबेट्स के अंदर ए के बाद बी आता है ना, सी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, ए के बाद बी ही नहीं आता है, लाजमन बी नहीं आना है, अलिफ के बाद बा नहीं आना है, ठीक है। तो पुराना कानून क्या था कॉज एंड इफेक्ट का, कि अलिफ के बाद नागुजीर तौर पर बा के मालूल को ही पैदा या जाहिर होना चाहिए, लेकिन नई साइंस अब सिर्फ इतना दावा कर सकती है कि अलिफ के बाद बा, जीम वगैरह के, यूं तो अलिफ के बाद बा और जीम वगैरह की यूं तो बेशुमार इम्कानात हैं, अलबत्ता इतना सही है कि उनमें अलिफ के बाद बा का नमूदार होना जीम के मुकाबले में और जीम का नमूदार होना दाल के मुकाबले में अगलब है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं कि अलिफ के बाद बा ही नहीं आना है, बल्कि अलिफ के बाद जीम भी आ सकता है, अलिफ के बाद दाल भी आ सकता है। हाँ, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, लेकिन अलिफ के बाद बा के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसने ये कहा कि मॉडर्न साइंस जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यही दावा कर सकती है। जेम्स जीन्स ने बताया है कि इस अगलबियत या जन्ने गालिब के सिवा किसी नाम निहाद इल्लत के बाद किसी खास नाम निहाद मालूल ही के पैदा होने का हुक्म ना तो कतईयत के साथ लगाया जा सकता है, ना उसकी पेशन गोई की जा सकती है। ठीक है, कि अलिफ के बाद बा ही आएगा, ये एब्सोल्यूटली नहीं कहा जा सकता, ठीक है, हत्ता कि ये एब्सोल्यूटली प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, कि प्रिडिक्शन ये है कि अलिफ के बाद भाई आएगा, नहीं, प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो इसको जो अंग्रेजी में फिर इन्होंने लिखा है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स काफी हो गई हैं इसके अंदर, तो इसका उर्दू ही पढ़ने में ज्यादा बेहतर है कि ये मामला कुल्लियतन खुदा ही के हाथ में है, जिसको भी खुदा कहा जाए, ठीक है। यानी ये जो जेम्स जीन्स है, ये कहता है कि ये मामला कुल्लियतन खुदा ही के हाथ में, जिसको भी खुदा कहा जाए, यानी अल्लाह को खुदा कहा जाए या नाउज बिल्ला उनके नजदीक जीसस को खुदा कहा जाए, या जो है वो ईश्वर को खुदा कहा जाए, हिंदुओं के नजदीक ईश्वर, वो खुदा को ईश्वर कहते हैं, कोई जो है वो खुदा को कोई और नाम देता है, ठीक है। वैसे तो खुदा खुद ही जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, अरबी जुबान में इसी यानी अल्लाह, ठीक है, खुदा जो है वो अल्लाह है, इलाह अरबी जुबान का लफ्ज है, तो जो भी आप कहें उसको, यानी वो एक एंटिटी है, एक हस्ती है, उसी के हाथ में है ये, ठीक है, कि वो अलिफ के बाद बे लेकर के आएगा या अलिफ के बाद जो है वो जीम या दाल लेकर के आएगा, ठीक है। तो उसके यानी खुदा का इनकार जो पहले बजाहिर नजर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, बड़ी अहम बात जिसका कि बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी रीसेंट डिस्कशंस के साथ, रीसेंट डिस्कशंस जो बयानात के अंदर और क्लासेस के अंदर बहुत रीसेंटली बहुत ही हाल में हुई है हमारी डिस्कशन। वो क्या डिस्कशन हुई है कि ये जो न्यूटन था ना, इसको लोगों ने ये भी कोट किया है कि ये कहता था कि मैं खुदा का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा का इनकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं एथियस्ट नहीं हूं, ये न्यूटन कहता था कि मैंने जो ये थ्योरी ऑफ यानी जो कॉज एंड इफेक्ट दी है, या जो मैंने ये ग्रेविटेशनल जो है वो लॉज ऑफ ग्रेविटी दी है वगैरह जो भी दिया है, मैं खुदा का इनकार नहीं कर रहा हूं, खुदा तो है, ठीक है ना, फिर ये किस चीज का इनकार कर रहा था, अगर आप में से कोई बताए। ये कहता था मैं खुदा का इनकार, तो ये किस चीज का इनकार करता था फिर, या इसकी जो थ्योरी थी उससे किस चीज का इनकार हुआ था, खुदा का इनकार नहीं हुआ तो फिर किस चीज का इनकार हुआ जी, कोई बताएगा आप ऐसे। कामात इलाही का इनकार हुआ और बताएं, इन्होंने जवाब दिया है डायरेक्ट मैसेज में, यानी कोई इनका नाम नहीं पढ़ सके, तो इसके लिए डायरेक्ट मैसेज में जवाब देते हम कहते हैं डरते डरते जवाब दे रहे, तो उन्होंने लिखा है कि अहकामात इलाही का इनकार किया उसने। कह तो सकते हैं लेकिन असल में ये नहीं, ठीक है। उसने तख्लीक का इनकार किया, नहीं, तख्लीक का भी जो इनकार है ना वो न्यूटन ने नहीं किया, वो किसने किया था, वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले ने, उसने तख्लीक का इनकार किया, न्यूटन ने नहीं इनकार किया था। अच्छा, अहकामात इलाही का इनकार, नहीं, वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बेशक अहकामात इलाही का इनकार किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें और जरा अगर आप तफसील बता दें तो फिर बात ज्यादा क्लियर होगी। अकायद का इनकार। अकायद तो आप मौलवी साहब आपको पता है ना क्या अकायद, उसको क्या पता बेचारे को अकायद का इनकार है। उसके तो पहले अकायद बिगड़े हुए थे, ट्रिनिटी को तो जो है वो गॉड्स वो समझते थे, हैं तीन खुदा हैं और खुदा एक है और ये है वो है सब है, एक बेटा है नऊज बिल्ला खुदा का, तो वो कौन से वाले अकायद का इनकार करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उसने इनकार किया। देखें एक तो सादा सा जवाब जो आप दे सकते थे ना वो ये है कि उसने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इनकार, ठीक है ना, ये सादा सा जवाब है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का, कि भाई ईसाइयत यहूदियत इस्लाम बुद्ध मत ये जो शरीयतें हैं ना ये मुख्तलिफ किस्म की, ये ऐसे ये नेकी का काम ये होता है और बदी का काम ये होता है और ये चीज करनी चाहिए ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये जो रूल्स एंड लॉज हैं जो जो दीनी लॉज हैं शरीयत जिसको कहते हैं, ये यहूदी शरीयत है ये ईसाई शरीयत है ये चाहे जैसे भी हो लेकिन है तो कोई ना कोई शरीयत ना उनके पास, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इसी को तो शरीयत कहते हैं। तो शरीयत का उसने इनकार किया, ये तो आप सादा अल्फाज में ये बात कह सकते हैं। लेकिन हमने आपसे सवाल पूछते हुए एक बात कही थी कि जो कि हमारी रीसेंट डिस्कशन में आई है ये वाली बात, ठीक है, वो कौन सी वाली बात आई है, वो ये आई है कि खुदा जिसको कि हम भी मानते हैं राइट, हम अल्लाह को मानते हैं ना, लेकिन हमारा भी मामला बड़े पैमाने पर हो या इनफरादी पैमाने पर हो, हमारा मामला क्या अनफॉर्चुनेटली हमारी शामत अमाल की वजह से हमारा क्या मामला बन गया है कि हम इतना तो मानते हैं कि खुदा ने हमें बनाया है, और इतना भी मानते हैं मुसलमान ये भी मानते हैं कि मर के हमने खुदा के पास जाना है ना, यानी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजून, ये तो हम मानते हैं हम अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है, लेकिन किस चीज का हम अमली तौर पर इनकार करते हैं या शऊरी तौर पर इनकार करते हैं। बसीर का इनकार करते हैं और नहीं बसीर का भी बसीर वो देख रहा है बस, लेकिन हम किस चीज का इनकार कर देते हैं अपने अमल से, अल्लाह जी दैट अल्लाह हैज एवरीथिंग इन हिज हैंड्स जी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का इनकार करते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ ये, हमने कंप्यूटर साइंस की भी मिसाल दी थी, दो किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं ना, एक होता है इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एक होता है बैच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसमें शुरू में जो है ना वो आप एक इनपुट दे देते हैं और फिर आखिर में देखते हैं कि क्या उसकी आउटपुट निकली है, दरमियान में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दरमियान में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दरमियान में उस प्रोग्राम ने खुद ही सब कुछ करना होता है, ठीक है, जैसा पहले से प्रोग्राम हुआ है बस उसने सब कुछ करना होता है दरमियान में। तो हमारा भी ना अल्लाह ताला के बारे में यही नजरिया बन गया है कि अल्लाह ताला इब्तिदा में उसने बना दिया इधर भेज दिया और इंतहा में देखी जाएगी जब उधर पहुंचेंगे उसके पास, दरमियान में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दरमियान में जो करना है मैंने खुद करना है राइट, अपनी अपने मेहनत से करना है, अपनी अकल से करना है, अपने इल्म से करना है, अपने जो भी आप कह रहे हैं मैंने उससे करना है, मैंने ही करना है या मैंने नहीं करना तो दूसरों ने करना है, ये अच्छा काम मैंने करना है काम मेरे दुश्मन ने करना है, मैं भी मखलूक दुश्मन भी मखलूक, खालिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खालिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन टाइप के जो थे ना उन्होंने भी दरअसल खालिक की नफी नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने किस चीज की नफी करी थी कि यहां पर जो ये जो हमारी जिंदगी है ना या ये जो यूनिवर्स है ये जो कायनात है जिसको नेचुरल इन्होंने यूनिवर्स कहा, इसके अंदर खालिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पे मैकेनिकल सिलसिला चल रहा है, देयर इज अ कॉज, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज बिहाइंड इट, ठीक है ना, कॉज होगी तो इफेक्ट होगा, कॉज होगी तो इफेक्ट होगा, खालिक इज नो मोर इन्वॉल्व राइट, क्रिएटर गॉड इज नो मोर इन्वॉल्व, ठीक है ना, इन द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स। यही है ना मोजे के ना, कि नफी का क्या मतलब है, मोजे के इनकार का क्या मतलब है। मोजा तो वो होता है ना जो कि इंसान की या तबीयी कॉजेस के बगैर कोई चीज हो जाए, जो कि खुदा की हुई हो, तो खुदा इन्वॉल्व होगा तब मोजा होगा ना। अगर खुदा इन्वॉल्व भी नहीं है तो फिर मोजा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि इन लोगों ने खुदा का इनकार किया, इन लोगों ने खुदा की इन्वॉल्वमेंट का इनकार किया। अनफॉर्चुनेटली कसूर दो इल्जाम औरों को देते थे, कसूर फिर अपना निकल आया। क्या मुसीबत है इनकी, हर वक्त ही अपना कसूर निकाल देते हैं। उधर सर सैयद की भी सारा हम तो इल्जाम दे रहे थे सारा का सारा सर सैयद को, ये आ गए एक है? इन्होंने कहा कि नहीं, सर सैयद जो गलती कर रहा था वही गलती तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आज जो है इन्होंने न्यूटन को भी जो है वो कर दिया, बरी कर दिया। अच्छा खासा हमारे हाथ में एक दुम्बा आता है, राइट, दुम्बा कहते हैं ना इसके, सारा जो है ना वो तो सारा दुम्बे के हवाले करना चाह रहे थे, फिर मुसीबत। ये हर बार जो है ना वो हमारे लिए अच्छे खासे जो है वो स्केप रूट्स निकल रहे थे, इनकी क्या पता नहीं क्या मुसीबत है कि ये स्केप रूट्स जो है वो हमसे वापस ले लेते हैं, कहते हैं कि ये गलती तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल भाई, तो जो जेम्स जीन्स है ना, उसने तो बाकायदा नाम लेके भी कह दिया कि ये मामला कुलियतन खुदा के हाथ, जिसको भी आप खुदा कहें, लेकिन है तो खुदा ही के हाथ में, ठीक है ना। यानी खुदा इज एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है। गर्ज 20वीं सदी में एटमी तजुर्बात की रोशनी में जो साइंस परवान चढ़ी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ी मेहनत भी करते थे, बड़ी इबादतें भी करते थे, बड़ी दुआएं भी मांगते थे, बड़ी जो है वो जासूसी का निजाम भी बनाया हुआ था, और ना जाने क्या क्या करते थे, लेकिन जब फतह मिलती थी तो कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा अंजद वादा व हजम अल अहदा वहदा, सब कुछ खुदा ने किया है, अपनी जो एफर्ट थी, अपनी जो अकल थी, अपनी जो प्लानिंग थी, सबकी नफी कर देते थे और कहते थे जो कुछ किया खुदा ने किया। यानी खुदा इज 100% इन्वॉल्व, यही तो नबी अलैहिस्सलाम कहते थे, खुदा इज 100% इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो गलत बात तो नहीं कह रहे भाई, क्या अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट है, हम नहीं मानते। गर्ज 20वीं सदी में एटमी तजुर्बात की रोशनी में जो साइंस परवान चढ़ी है, उसने उन पुराने तसव्वुरात को जड़मोल से ही खत्म कर दिया, जड़मूल से ही खत्म कर दिया, यानी जड़ से ही खत्म कर दिया, कि कायनाती अशिया की खासियतें उन अशिया से जुदा नहीं हो सकती, और आग से जलाने की सिफत को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये जो पुराने तसव्वुरात थे कि आग से जलाने की सिफत को कभी अलग नहीं किया जा सकता, अब साइंस का कहना यह है कि आग अक्सर और बेशतर तो जलाती जरूर है, और गालिब गुमान यही है कि जहां आग होगी वहां तपिश और जलन पाई जाएगी, लेकिन अगर कभी उसके खिलाफ हो जाए तो ये ना अकल के खिलाफ है और ना साइंसी मुसल्लमात इसकी तरदीद कर सकते। कितनी बड़ी बात कही है, यानी साइंस अगर कभी, सॉरी, आग अगर कभी ना जलाए तो ये बात अकल के खिलाफ नहीं है, ये बात अकल के खिलाफ नहीं है, ठीक है, और ना साइंस वाले इसकी तरदीद कर सकते हैं। लिहाजा आज का साइंसदान मोजजात के बारे में ज्यादा से ज्यादा लाइल्मी का इजहार कर सकता है कि भाई वी डोंट अंडरस्टैंड द फिनोमेना बिहाइंड इट, वी डोंट अंडरस्टैंड द वर्किंग बिहाइंड इट, ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि नहीं वो हो ही नहीं सकती वो चीज, ठीक है, उसको नामुमकिन कहकर उसका उसूली इनकार नहीं कर सकते। शायद यही वजह हो कि 20वीं सदी में मगरिब के आवाम फिर उन चीजों की तरफ लौट रहे हैं जिन्हें वो पहले मा फौकुल फितरत समझकर तवहम परस्ती करार दिया करते थे, ठीक है। मगरिब के आवाम उस तरफ लौट रहे हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड, जिसको कि हमारे यहाँ रूहानियत कहा जाता है, ठीक है ना, जो उनके पढ़े लिखे और जरा संजीदा किस्म के लोग हैं वो इस तरफ वापस लौट रहे हैं, ठीक है। अगरचे कि वो रूहानियत के अभी भी करीब तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसकी अहमियत को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ रूहानियत एक अहम चीज़ है, और जो है वो हर चीज़ मादियत में नहीं होती है, और खुदा है और रूहानियत होनी चाहिए, इस तरह की बातें जो है वो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे कर रहे हैं। ठीक है, पहले उनको तो तवहम परस्ती कहना शुरू कर दिया था, वो 200-300 साल की बात है बस। ये यानी ये जो सारे तमाशे बने हैं ना ये साइंस के, ये न्यूटन ने क्या 1600 में ये हरकतें शुरू करी, बातें शुरू करी, और 1900 के सॉरी 1800 के एंड तक टाटा फिश फिश है, बाय बाय। इंतहा ये है कि फिर तजद्दुद पसंदों की जहनीयत हमेशा से यही रही है कि वो जमाने के आम शोर शोब से मुतासर व मरऊब होकर बड़ी जल्दी से एक राय कायम कर लेते हैं, और मामले की पूरी तहकीक किए बगैर ही उस राय पर फिक्र नजर की पूरी इमारत खड़ी कर लेते हैं। मौजजात के मामले में भी यही हुआ है कि जिस वक्त सर सैयद अहमद खान साहब और उनके हम नवा दूसरे मुतजद्दिदीन मौजजात को नामुमकिन करार दे रहे थे, उस वक्त मगरब में आम शोर तो बेशक उनके इनकार ही का था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फलसफा और साइंस की दुनिया के तमाम लोग ह्यूम और हेक्सले की तरह मौजजात के मुनकर हों, बल्कि बहुत से साइंस उस वक्त भी मौजजात के कायल। न्यूटन, अब ये न्यूटन हजरत ने यहाँ पे जो लिखा है इसकी या तो ये वही लिखाई की गलती हो सकती है या कोई इसकी वजह होगी जो हमें समझ में नहीं है। ठीक है, क्या तो लिखा था कि न्यूटन की इस थ्योरी की वजह से मौजजात की नकल, या तो ये है कि उसकी थ्योरी की वजह से मुतजद्दीदीन ने मौजजात का इनकार कर दिया लेकिन न्यूटन ने खुद इनकार नहीं किया था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि न्यूटन ने जो है ना ये नहीं कहा था कि मैं खुदा का इनकार कर रहा हूं, उसने कहा था कि मैं एग्नोस्टिक हूं। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कि खुदा है खुदा नहीं है, ये इस तरह का मामला था उसका। बहरहाल हो सकता है वो वजह हो कि जिसकी वजह से हजरत ने न्यूटन का नाम भी उन लोगों में यहाँ पे शामिल किया है कि बहुत से मुमताज साइंसदान उस वक्त मौजजात के कायल थे जिनमें न्यूटन, फ्राइड और सिम्पसन और खेलोन और लिस्टर बतौर खास, या लेस्टर बतौर खास काबिल जिक्र हैं, और जर्मनी के मशहूर साइंसदान लोट्स ने तो मौजजात की तायीद में बड़े मार्के के मजामीन लिखे और साबित किया है कि मौजजात किसी भी तरह अकल या साइंस के खिलाफ नहीं। ठीक है, उसके जो नीचे उसके रेफरेंस दिया हुआ है, मुलाहिजा हो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सफा नंबर भी दिए हुए हैं, वो मतबूआ 1950 मकाला मौजजा। इस मकाले में एल्फ्रेड ई गार्वे ने मौजजात के इम्कान और ज़रूरत पर अच्छी बहस की है और साबित किया है कि मौजजात ना सिर्फ अकल और साइंस की रूह से मुमकिन है बल्कि उनकी नज़रियत उनकी ज़रूरत नाकाबिले तरदीद है। इसके अलावा मौजे के मौजू पर मंदरजा ज़ेल किताबें बतौर खास काबिल मुतालिया हैं। एक तो सीरत नबी का सफ़ा ये बाब मुअल्लफ़ा मौलाना अब्दुल बारी नदवी, और फिर मौक़िफ़ुल अक़ल वल इल्म वल आलिम मुअल्लफ़ा शेख मुस्तफ़ा सबरी बख, गालबन तुर्की के होंगे, इस्लाम और मौजजात मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह। बहरहाल ऊपर अहद हाजिर के साइंसदानों ने जो अकवाल पेश किए हैं हमने उनको कुरान करीम की सदाकत और हक्कानियत की दलील के तौर पर पेश नहीं किया। ठीक है, अब जो है ना वो असल मौजू की तरफ वापस आ रहे हैं और उसमें सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि हमने जो साइंसदानों के अकवाल पेश किए हैं ना हमने उनको कुरान करीम की सदाकत और हक्कानियत की दलील के तौर पर पेश नहीं किया है। ये मत समझिएगा कि हम कुरान मजीद के ऊपर बिलीव करने के लिए साइंसदानों के कौलों के मोहताज हैं, हरगिज नहीं, क्योंकि कुरान करीम की सच्चाई इन अकवाल की तायीद से बेनियाज है। वो उस वक्त भी सच्चा था जब साइंसदान मा फौक उल फितरत अशिया का मजाक उड़ाते थे, और आज भी वो सच्चाई है जब साइंसदान खुद मा फौक उल फितरत अशिया के इम्कान को तस्लीम कर रही है, और अगर बिलफर्ज कल साइंस के नजरियात दोबारा बदल जाएं तो उसकी सच्चाई में उस वक्त भी जर्रा बराबर कमी नहीं आएगी, यानी हमारे बिलीफ में हमारी सर्टेनिटी में उस वक्त भी कमी नहीं आएगी। अगर साइंस दोबारा से इनकार करना शुरू कर देना हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये अकवाल हमने सिर्फ ये बताने के लिए पेश किए हैं कि जिन लोगों ने मुरवजह नजरियात से मरूब होकर कुरान करीम की तफसीर में कतरबीयूनत करने की कोशिश करी थी, यानी कट कट करने की जो कोशिश करी थी ना, इधर से काट दो इस चीज को, जो है वो निकाल दो इस चीज को, जो है वो मॉडिफाई कर दो, जिन लोगों ने इसकी कोशिश करी थी साइंसी नजरिया से मरूब होकर, उनकी बुनियाद किस कदर कमजोर और नापायदार थी। उन्होंने एक ऐसे कलाम को वक्ती नजरियात के पैमाने से नापने की कोशिश की थी जिसका इल्म माजी व मुस्तकबिल की तमाम वसअतों को मुहीत है और जिसके आगे फिक्र इंसानी की तमाम काविशें बच्चों के खेल से ज्यादा वक्त नहीं रखती। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो है ना वो कहीं पे पढ़ा है जो लिख रहे हैं कि इवन ए काइंड ऑफ फायर इज डिस्कवर्ड दैट डजंट बर्न एंड इट प्रूव्स द मिरेकल ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इट प्रूव्स द मिरेकल का जो लफ्ज है ना वो आप ना इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये लफ्ज जो है वो यहाँ पे मुनासिब नहीं है। ठीक है, इट प्रूव्स अ मिरेकल ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल हाँ, अगर उन्होंने कोई ऐसी फायर डिस्कवर कर ली जो कि बर्न नहीं करती है तो अच्छी बात है, गुड फॉर देम, इसको हम कहते हैं गुड फॉर देम। ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा दे इसके बाद है। लेकिन बहरहाल तो क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिरेकल प्रूव जो है ना उसको करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, वो प्रूव है, पहले से प्रूव प्रूवन है। लिहाजा अगर कुरान करीम को अपने नजरियात का ताबे बनाने की बजाय उससे वाकईतन रहनुमाई हासिल करनी है तो उसे राइजुल वक्त नजरियात की ऐनक से पढ़ने की बजाय उस तरह पढ़िए जिस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने पढ़ा था और उसकी तशरीह व तफसीर के वक्त मुरवजा अफकार शोर व गुल से मुतासिर होने की बजाय, यानी जो मुरवजा अफकार होते हैं ना दुनिया के अंदर राइज, उनको क्या कह रहे हैं, शोर व गुल, ठीक है ना, दिस इज जस्ट नॉइस, उनसे मुतासिर होने की बजाय वो उसूल इस्तेमाल कीजिए जो तफसीर के फितरी माकूल और वाकई उसूल हैं। उन उसूलों के जरिए जो बात कुरान करीम से वाज तौर पर साबित हो जाए उसे झेप झेप कर और शर्मा शर्मा कर नहीं बल्कि पूरे यकीन और ईमान और खुद एतमादी के साथ दुनिया के सामने पेश कीजिए और जमाने के मुरवजा नजरियात हजार उसके खिलाफ हों, यकीन रखिए कि हक वही है जो कुरान करीम ने बयान कर दिया। अगर इंसानियत की किस्मत में कोई फलाह लिखी है तो वो हजार ठोकरें खाने के बाद उसके बयान किए हुए हकायक तक पहुंच कर रहेगी। ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला की फैसले में है कि जी इंसानियत ने जो है ना ओवरऑल एज अ ह्यूमन रेस अगर इंसान ने सक्सीड यानी सक्सेसफुल होना है, सक्सीड करना है अपनी जिंदगी के अंदर एज अ रेस, ह्यूमन रेस, तो वो पहुंच के रहेगी हकीकत तक, ठीक है ना, लेकिन कोई इसका पता नहीं है कि एज अ ह्यूमन रेस जो है वो सबने कामयाब होना है कि नहीं होना है वगैरह। तो यहाँ पर जो है हम आज की क्लास रोकते हैं, किसी को कोई सवाल हो या कोई और अगर कमेंट आपके जहन में हो तो लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी अहम मजीद डिस्कशन इसी की कंटिन्यूएशन में, इसी के तसलसल में है, खिलाफ अकल और मावराए अकल, अकल में क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ अकल से मावरा होती है यानी ऊंची होती है, तो इसके बारे में भी हजरत ने बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर समझाया है हमें। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, कोई सवाल गालबन नहीं है तो रोकते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।